नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अभयम और आज मैं लेकर आया हूं एक नया विषय। कई मित्रों ने मेरे पॉडकास्ट को सुनकर अलग अलग विषयों पर कुछ सुनने की इच्छा जताई है। मुंबई से भाई अरविंद मिश्रा ने सलाह दी है कि मुझे नेचर एंड कल्चर पर कुछ बोलना चाहिए, तो लीजिए प्रस्तुत है इसी विषय पर कुछ मेरी बात। नेचर प्रकृति है, कल्चर संस्कृति है। प्रकृति ईश्वर प्रदत्त है, संस्कृति मानवीय सभ्यता की पारंपरिक श्रृंखला है। प्रकृति परमात्मा का ही प्रकट रूप है और परमात्मा को पाना है तो प्रकृति को उसका मुख्य द्वार समझना चाहिए। अब पहले प्रकृति क्या है इसे समझ लेते हैं, फिर हम संस्कृति पर आएंगे। एक बात ईमानदारी से सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखे आपको कितने दिन हुए या कितने महीने? आपने कभी इस दौड़ भाग की जिंदगी में कभी सिर उठाकर आसमान की ओर ताका है? आप देखिए, जब भी जहां भी मौका मिले एकाग्रता से देखिए सितारों को। जब कभी किसी पेड़ के पास से गुजरिए उसे देखिए और मुस्कुराइए जैसे कि वो जीवंत हो। समय हो तो प्रेम से उस पेड़ को सहला भी सकते हैं, एक मित्र की तरह उसे गले लगा सकते हैं। आज भी सूखी मिट्टी पर जब बरसात की पहली बूंद पड़ती है तो उसकी महक आपके मन में अमिट छाप छोड़ती है कि नहीं? कौन सा परफ्यूम उसकी बराबरी कर सकेगा? और धूप से भी बचिए मत, इसी सूर्य से तो जीवन ऊर्जा मिल रही है पृथ्वी को, आपको, मुझे और हम सबको। धूप हमारी जरूरत है, हमारी चमड़ी से लेकर हड्डियों तक के लिए आवश्यक है धूप। और किसी शांत झील के पास भी कभी थोड़ी देर बैठ जाना, मौका मिले तो जरूर बैठना। कभी किसी नयन रम्य स्थान पर जाना जहां खूब हरियाली हो सके तो एकांत में जाना और उस दृश्य को सिर्फ देखना मत, आंखों से पीने का प्रयास करना। आपकी आंखों से आनंद के आंसू न निकल आए तो कहना, उस समय धन्यवाद देना मां प्रकृति का कि उसने तुम्हें अपना हिस्सा बनाया। कुल मिलाकर हम प्रकृति को केवल धन्यवाद दे सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं, उसका ऋण कभी नहीं उतार सकते। मां का ऋण कभी उतारा भी नहीं जा सकता। प्रकृति मां है और उसकी सृजनशीलता ही उसके मातृत्व का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। मां सर्जक होती है, क्रिएटर। प्रकृति सर्जक है, क्रिएटर है। अब बात करते हैं संस्कृति की। प्रकृति ईश्वर प्रदत्त है और संस्कृति मनुष्य की जीवन शैली का विस्तार। कहा गया है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात पिंड यानी मनुष्य के भीतर की ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्ति आपस में कनेक्ट है। सनातन परंपरा में सदैव यही प्रयास किया गया कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य की जीवन शैली को ढाला गया। भारत में यहाँ की जलवायु और मौसम को देखकर हमारे ऋषियों ने कुछ नियम बनाए। ये नियम बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। आप अपने कैलेंडर को देखिए और उसमें ये देखिए कि हमारे तीज त्यौहार अक्सर तब आते हैं जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है। भारत में वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु आती है। वसंत ऋतु में गुड़ी पाड़वा, होली, रामनवमी, हनुमान जयंती, बैसाखी, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार आते हैं। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में बुद्ध पूर्णिमा और गंगा दशहरा, वर्षा ऋतु में सावन, शरद ऋतु में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा और हेमंत ऋतु में दिवाली और भाई दूज आदि त्यौहार आते हैं, जबकि शीत ऋतु में लोहड़ी और वसंत पंचमी का त्यौहार आता है। इसके अलावा हर महीने की संकष्ट चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष आदि तिथि का विशेष महत्व है। अमूमन इन त्यौहारों के दौरान इन तिथियों को व्रत रखने की परंपरा है। मान्यताओं के आधार पर इन व्रतों का परमात्मा से अवश्य संबंध होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, अक्सर मौसमी बीमारियां बदलते मौसम में ही होती हैं, और बदलते मौसम यानी बदलती ऋतु के दौरान व्रत उपवास हमें कई बीमारियों से भी बचाते हैं। सोचिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी गहरी खोज की होगी। संकष्टी, एकादशी या अन्य पाक्षिक या मासिक व्रत भी हमें सावधान करने के लिए हैं। यह बताने के लिए है कि भोजन में संयम रखना है। जब जहां जो मिला हम खा रहे हैं। पैक्ड फूड, इंस्टेंट फूड, फास्ट फूड का जमाना है। धैर्य ही नहीं है। अब तो माइक्रोवेव आ गए हैं, प्रेशर कुकर है, अब भोजन बनता कहाँ है? अब भोजन केवल पकता है। खैर, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार संस्कृति में समय समय पर बदलाव या यूं कहें कि संशोधन होता गया, और संस्कृति का ट्रेंड हमेशा बदलता गया। फैशन की तरह हर देश और प्रांत की एक जीवन शैली है। प्रकृति से तारतम्य बिठाते हुए ही संस्कृति का जन्म हुआ। अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और एक दूसरे की संस्कृति को समझने का मौका भी मिल रहा है। ये समझना तब तक ही ठीक है जब तक उस देश या प्रांत की संस्कृति वहीं तक सीमित रहे। दरअसल रहन सहन, पहनावा आदि का अंधानुकरण किया जाएगा तो परेशानी बढ़ सकती है। जरा सोचिए, लुंगी पहना हुआ आदमी कश्मीर की वादियों में घूमेगा तो कैसा लगेगा? वह ठंडी से ही मर जाएगा। या कश्मीर में कई कपड़ों के साथ पहना जाने वाला फेरन पहनकर दक्षिण भारत की गर्मी में जाया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरों की संस्कृति को जानना ठीक है, लेकिन अपनाना तभी ठीक है जब आप या हम उस देश या प्रांत में रहें। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि प्रकृति गॉड मेड है और संस्कृति मैन मेड। प्रकृति से संपर्क बढ़ाते रहिए, संस्कृति का पालन करते रहिए और सुनते रहिए आपकी बात अभयम के साथ।